इसलिए उपस्थित हो क्योंकि आपकी भक्तियों में रुचि है, सच बात है। और भक्तियों का अर्थ है प्रेम के साथ सेवा करना, शास्त्र पढ़ना है। तो आज हम आपको भागवत में का एक प्रसिद्ध श्लोक पढ़कर सुनाएंगे, जिसमें ब्रह्म जी के पुत्र को महाराज जो है ऋतु महाराज को उपदेश दे रहे हैं कि हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो आप सब भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो सब भक्त? कई प्रदेश भक्त उपस्थित है सब हमें, कई और भक्त उपस्थित है सोलह मना करते हैं, तो कई अतिथि भी उपस्थित है। पर अक्सर ये अनुभव है कि जो अतिथि भी इस पर मंदिर में आते हैं इसीलिए आते हैं क्योंकि ये कृष्ण भक्ति में रुचि है। ये हमारा अनुभव है सारे विश्व में, वैसे तो हर शहर में अनेक मंदिर हैं, पर इस पर मंदिर में आते हैं क्योंकि खास रुचि है और साधु संघ के द्वारा ये रुचि बढ़ते जाती है। तो समय का थोड़ा अभाव है, ये है भागवत 14:22 अध्याय श्लोक नंबर 24 जो गीता के तरफ से श्री गणेश करूँगा जो आपको अनुमान पर कर सकता है।
हनुमान मेरे पीछे दोहराए आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि वह अहिंसक हो, महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन करे, भगवान की लीलाओं के अमृत का सदैव स्मरण करे, बिना किसी भौतिक कामना के यम नियमों का पालन करे, और ऐसा करते हुए दूसरों की निंदा ना करे, भक्त को अत्यंत साधा जीवन बिताना चाहिए, और विरोधी तत्वों की व्यर्थता से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह उन्हें सहन करना सीखे। आत्मरे प्रभु पांचे के द्वारा श्री प्रभु पार्वती भक्तवादियों में साधु पुरुष होते हैं। साधु अथवा भक्त का पहला गुण अहिंसा है। जो लोग भक्ति पथ में चलने या भगवान के धाम वापस जाने के इच्छुक हैं उन्हें पहले अहिंसा का अभ्यास करना चाहिए। साधु को कारण का भागवत 3:25-21 कहा गया है, भक्त को सहिष्णु एवं अन्यों के प्रति अत्यंत दयालु होना चाहिए। उदाहरणार्थ यदि उसे कोई चोट लगे तो उसे सह लेना चाहिए, किंतु यदि किसी अन्य को चोट लगे तो भक्त को ये सहन नहीं होता है।
Thank you. भगवान को कृपा, ये हैं राम जी के पुत्र मेरे चार कुमारान के नाम से जाने जाते हैं। हरे कृष्णा। सुनाई दे रहा है आपको? मैं गलत थोड़ा बैठा हूँ, सुनाई दे रहा है उसको मैंने उसको। तो ये श्लोक उच्चारण रमा जी के जो पुत्र हैं कुमारन वो कर रहे हैं, और ये उपदेश दे रहे हैं एक राजा को जिसका नाम था विष्णुमान जी का था। भागवत में 34 काम में बात कर रहे हो, श्रीमद भागवत का जो उपदेश है ये सबसे ऊंच उपदेश माना जाता है। ज्ञान का करोड़ कलिपन पा, और इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक है, और भगवान के भक्तों की लीलाओं का वर्णन है, और शुरू से अंत तक एक ही मूल संदेश है, वो यह है कि भक्ति योग एक माध्यम है जिसके द्वारा आप हर चीज सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो महाराज पूरे विजय के सम्राट थे, और उन्होंने प्रजा को आध्यात्मिक उपदेश दिया। शास्त्र में कहा जाता है कि अगर कोई राजा या लेखक बने तो इसकी जिम्मेदारी होती है कि प्रजा को आध्यात्मिक उपदेश मिले, कि नहीं कि जैसे आज के वातावरण में आपके नेताओं का कोई चरित्र है माना है, और उनके मन में एक ही भाव रहता है जितना कारण लग सकता है जितना दूर सकते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि कोई अधिकारी अगर केवल कर ले और लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे तो उसको परिणाम मिलना होता है। तो पितृ महाराज ऐसे भगवान क्या बता रहे हैं, तो जब कुमार के घर में आए उन्होंने बड़े आदर से उन्हें स्वागत किया और उनसे निवेदन किया कि आप मुझे आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए। जब हम संतों की संगत में आते हैं तो वहाँ भाव क्या होना चाहिए, कोई भौतिक आशीर्वाद मांगे, वहाँ भावना ही होनी चाहिए कि हम आध्यात्मिक ज्ञान भी मांगे, ये चीज भी मांगे या भक्ति में आगे कैसे बढ़ते। तो यही था पितृमान का भाव। तो तुम्हारा ने पहले ये कहा कि साधु संगत का लाभ उठाओ, इस अध्याय में पिछले श्लोकों में संत कुमार ने कहा कि अगर हम भक्ति के मार्ग में उन्नति करना चाहते हैं तो किस चीज की आवश्यकता है, साधु संगत की आवश्यकता है। महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में जब गए तो बड़े प्रसिद्ध भक्त रामचंद्र रॉय की संगत में आए, उनसे पूछे तो चैतन्य महाप्रभु ने रामचंद्र रॉय से अनेक प्रश्न पूछे, जिनमें एक प्रश्न ये था कि भक्त के लिए सबसे अधिक कष्ट की क्या स्थिति है। और रामचंद्र रॉय ने कहा भक्तों की संगत से जुदा हो जाना ये सबसे अधिक कष्ट की स्थिति है, और सारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि अगर भक्तों की संगत का लाभ उठाना चाहिए तो आप सब जो यहाँ उपस्थित हो इसलिए उपस्थित हो क्योंकि अभी आध्यात्मिक जीवन में रुचि है, और जिस प्रकार भौतिक क्षेत्र में हमारा प्रयास रहता है कि हम उन्नति करें, लेकिन मान लो आप नौकरी कर रहे हो तो अगर आपको आपके साथ मालिक तनख्वाह नहीं पढ़ाए तो आपको अच्छा लगता है, आप चाहते हो पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में उन्नति करो अच्छे नंबर में पास हो, नौकरी कर रहे हो तो आप चाहते हो कि नौकरी में भी आगे उन्नति करो। तो इसी प्रकार भक्ति के मार्ग में भी हमारा क्या भाव होना चाहिए कि हम भक्ति के मार्ग में उन्नति करें, और साधु के द्वारा ये संभव हो सकता है। इसलिए चैतन्य चतुर्विध में कहा गया है साधु संघ साधु संघ सर्व साधु है दावा मात्र साधु संघ सर्व। हमारे गुरु महाराज जी अकेले गए थे पश्चिम देश में कृष्ण भक्ति की स्थापना करने के लिए। उनके गुरु महाराज ने 1922 में उन्हें आदेश दिया था, ये कहा तुम पढ़े लिखे युवक को ले जाओ खेत में महापुरुष को और इसलिए भक्ति दिनानंद ने आदेश दिया क्योंकि खेत में महापुरुष की भविष्य हो रही थी कि पृथ्वी में आज नगर देना पृथ्वी में जितने नगर काम है सब जगह हरे लोगों को प्रभा जी ने प्रयास किया संगति और सारे विश्व में यानी आपके संस्थान का प्रभाव है प्रचार। तो आप सब जो आध्यात्मिक प्रगति चाहते हो आप सबका ही नियम होना चाहिए कि कम से कम हफ्ते में एक बार गो आपका और साधु संगत के लाभ उठाओगे भक्ति में उन्नति कर पाओगे। और अगर हम सदा और भक्तों की संगत में रहेंगे और भक्तों की संगत में रहना तो पड़ता है क्योंकि आप लोग नौके करते हो पढ़ाई करते हो बहुत ही कार्य में जुड़े हो परंतु इसके साथ भक्तों की संगत का भी लाभ उठाना चाहिए। तो महाराज ने कहा है भक्तों की संगत में रहना चाहिए उसके द्वारा भगवान के प्रति जो आकर्षण है वो बढ़ेगा। तो आज के श्लोक में क्या कहा जा रहा है आध्यात्मिक प्रगति के इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि वो अहिंसक हो। तो जो भक्त है वो किसी को कष्ट नहीं देना चाहता किसी को नहीं। इस विषय में हम भगवान के 5वें स्कंध में जन भारत की कथा होते हो तो पूर्व जन्म में भारत महाराज थे और जब उन्होंने जन भारत के रूप में जन्म लिया तो एक समय एक राजा जिनका नाम था महाराज भूमना उन्हें बल्कि में उठा कर ले जा रहे थे कथा सुनने में। प्राचीन समय में जो राजा थे उन्हें बल्कि में उठा कर जा रहे और राजा की इच्छा थी जल्दी से चले दूसरे सेवक इतनी तेजी से नहीं बल्कि प्रभु ले जा रहे थे। तो वहां उन्होंने देखा एक वेल बिल्ड बड़ा थे बिल्ड यह ब्राह्मण व्यक्ति था उसके नाम से जल था। तो सेवक ने कहा आओ राजा को उठाने में सहयोग करो ऐसा परिवर्तन आया कि भविष्य में बैर सुनी हर सब कुछ की बात ये देख बिना केवल की बात हो रही तो जो भगवान के भक्त हैं वो अहिंसक किसी को कष्ट नहीं देना चाहते ये नहीं कि आज कल के जो बुद्धिस्ट हैं गुरु गोविंद जी ने अहिंसा का प्रचार किया कह गए हम बुद्धिस्ट हैं तो सब कुछ खाएंगे मांस तो जो वैष्णव है वो किसी को कष्ट नहीं देना चाहते महान आचार्य के पंचीरों के अनुगमन करें जो आध्यात्मिक जीवन आपको चाहिए तो महान आचार्य की जो शिक्षा है उसके आधार पर हमें चलना चाहिए रूपा गोस्वामी जी ने हमें अनेक ग्रंथ दिए और जिनमें खास करके दो ग्रंथ बड़े प्रसिद्ध हैं जिनका नाम है भारतीय और श्री उपनेश्वर ग्रंथ लोग कहते हैं आध्यात्मिक उन्नति सर सर कर्मों को प्रवण करना जो महान आचार्य की शिक्षा है उसके आधार पर हमें आध्यात्मिक जीवन में करना चाहिए और अनेक धार्मिक संस्थाएं हैं भारत दिल्ली कलकत्ता विश्व में अब भारत के धार्मिक संस्थान को अजमाओ और ये अगर देखो कि उनका जो शिक्षा है क्या शास्त्र पर आधारित है क्या महान आचार्य पर आधारित की शिक्षा पर आधारित है और देखोगे क्या बहुत कम संख्या में तो आध्यात्मिक जीवन निर्भर होना चाहिए महान आचार्यों की शिक्षा के ऊपर उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी जब ग्रंथों का अनुवाद भी करते थे तो अपने सामने समक्ष रखते थे क्या महान आचार्यों के शास्त्रियों को और उनको पढ़कर प्रभुपाद जी ने हमें शास्त्रीय दिए हैं जो पढ़ते हो उनके एवं परमानंद जी जो आध्यात्मिक ज्ञान है कैसे आता है गुरु परंपरा के द्वारा और महान आचार्य की जो शिक्षा है वो 100% निर्भर है शास्त्र के ऊपर प्रभुपाद जी ने जब भगवद्गीता का अनुवाद किया उन्होंने भगवद्गीता का अनुवाद निर्भर किया किस पर बालदेव विद्याभूषण जिन्होंने भगवद्गीता के ऊपर शास्त्र दिया प्रभुपाद जी ने हमें जो शिक्षा दी 100% 90 भी नहीं निर्भर है महान आचार्य की शिक्षा और अगर हम आचार्यों की शिक्षा के आधार पर चलोगे तो आप कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकोगे और इसलिए हमें महान आचार्यों की शिक्षा के आधार पर गुरु साधु शास्त्र आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें गुरु द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान मजबूत करना चाहिए इस विषय में चैतन्य महाप्रभु ने कहा पहले कदम में हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए फिर आगे सेवा करनी चाहिए आगे दीक्षा ग्रहण करना चाहिए आगे पूछो कि मुझे क्या त्यागना चाहिए भक्ति के मार्ग में उन्नति करने के लिए आगे अगर कोई त्यागना भी पड़े तो उसे किसी कीमत पर त्याग मान लो गंभीर बीमारी हो जाती है तो उसके इलाज के लिए अगर कोई त्यागना भी पड़े आप त्याग करें तो गुरु साधु शास्त्र गुरु जो है हमें शिक्षा देता है साधु की शिक्षा पर आधारित जो साधु है वो शिक्षा देते हैं शास्त्र पर आधारित तो शास्त्र का अर्थ क्या है भगवान की वाणी तो अगर हम महान आचार्यों की शिक्षा के आधार पर चलेंगे तो फिर आप आध्यात्मिक उन्नति अवश्य कर सकेंगे हमारे आचार्यों ने हमें अनेक ग्रंथ दिए हैं उदाहरण के लिए चैतन्य महाप्रभु जी जो प्रसिद्ध भक्त थे वृंदावन के छह वर्ष गौरी उन्होंने हमें अनेक ग्रंथ शिक्षा दी है और एक दूसरा कह सकते हो हर प्रश्न का उत्तर है इन ग्रंथों में। जो गोस्वामी थे वृंदावन के उन्होंने हर प्रकार के सुख को किया है। रिपोर्ट सनातन आज से 500 साल पूर्व इस पृथ्वी के सबसे प्रसिद्ध राजा थे उनके राज्य में शासन कर रहे थे। उनकी इच्छा नहीं थी इस कार्य में जुड़ने के लिए, जबरदस्ती उन्हें छोड़ा गया इस कार्य में। और थोड़े समय के दोनों भाइयों ने ये कर्तव्य निभाया, फिर रूपा गोस्वामी ने सरकारी नौकरी त्यागी। जेल में डाल दिया था नवाब ने। सनातन गोस्वामी की रुचि नहीं थी इस कार्य में जुड़े रहने के लिए, तो उन्होंने राजा को सूचना भेजी कि मैं बीमार हूं, पर वो 30 ब्राह्मणों के साथ बैठकर भगवत का अध्ययन कर रहे थे। तो राजा को पता लगा कि बीमार नहीं है, ठीक है। तो राजा ने कहा वापस जिम्मेदारी उठाओ राज्य के शासन की, पर वो नहीं माने जेल में मिला। जेल से बड़ी कठिनाई से तो रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय के सबसे धनी मान्यता खानदान के भी एक लौट गए। हर प्रकार की सुविधा थी, तो बचपन से लोग से निकलते थे उनके साथ 12 सिपाही आगे बढ़ते थे उनकी सुरक्षा के। पर उन्होंने हर प्रकार के सुख दिया था इसलिए भक्ति निभाने। और रघुनाथ दास गोस्वामी अंतिम दिन हमें 22 घंटे दिन में जाप करते थे, मुश्किल से 1.5 घंटा उनके दर्शन के। हजारों लोग आते थे, लगभग 2000 लोगों को प्रणाम करते थे और खाने के लिए क्या हो रहा था। फिर गोस्वामी ने हमें अनेक ग्रंथ दिए हैं और प्रॉपर ने खास करके इन दो ग्रंथों का अनुवाद किया ताकि ग्रंथों के मुख्य आप भक्तों को पढ़ना चाहिए। आप भक्तों के पास आप कितने भक्तों ने श्री उपदेश में पढ़ा है, निवेदन है सब पढ़िए श्री उपदेश में। छोटा ग्रंथ है केवल 11 श्लोक के साथ और हर श्लोक का बड़ा महत्वपूर्ण संदेश। तो कुमार ने कहा ध्यान उन्नति के लिए हमें एक तो अहिंसा का पालन करना चाहिए, दूसरा भगवानाचार्य के शिक्षा के आधार पर चलना चाहिए। आगे आगे क्या कहते हैं, भगवान की लीलाओं के अमृत का सदा स्मरण करें। तो भगवान की लीलाओं का स्मरण करो। भगवान ने कई श्लोकों में ये कहा है कि हमें उनका स्मरण करना चाहिए। कौन सा है वो प्रसिद्ध श्लोक भगवान की देते हैं, मन मना भावा मन भक्तो मन यदि मन पुरुष माँ में वाणी करते हैं प्रति। तो भगवान इस प्रसिद्ध श्लोक में क्या कह रहे हैं, मेरा स्मरण करो, मेरा भक्त करो, मेरी उपासना करो, मेरी पूजा करो। अगर तुम ये सब करोगे क्या लाभ होगा अंत में, भगवान के नाम। तो यहाँ कहा जा रहा है भगवान की लीलाओं का सदा स्मरण करो। भगवान की लीलाओं का स्मरण करोगे तो आप अपने मन को बचा सकोगे गलत विचारों से, और अगर भगवान की लीला का स्मरण नहीं करोगे आपका मन भटकेगा कहाँ। बाबा जी एक सरल उलझ उदाहरण देते थे, अगर आपके पास में पानी है तो उस पानी की पूजा करो, तो अगर खाली रहेगा या आधा रहेगा तो भगवान की लीला का स्मरण, भगवान की लीला के साथ उनके भक्तों की लीला का स्मरण, भगवान की लीलाओं का वर्णन भगवत में चैतन्य महाप्रभु की लीला का वर्णन चैतन्य चतुर्थ के श्रद्धा थे जिन्होंने कृष्ण भक्ति को सारे विश्व में बताया, उनकी लीला का स्मरण की चर्चा भी है। हमें किसी न किसी रूप से भगवान की लीला का स्मरण रुचि बनानी है, तो ये संभव होगा अगर हम इन ग्रंथों का भी अध्ययन करेंगे। सच बात है, अगर हम भगवान के ग्रंथों का अध्ययन ही करेंगे तो लीला का ज्ञान कैसे होगा, इसलिए इन ग्रंथों का अध्ययन भी होगा। और ग्रंथ है एक अनुवाद भारतीय लगभग हर पाठ में हो चुका है और पूरे विश्व में 70 से अधिक अंतर भाषाएं जितने इन अनुवाद हो, तो इन ग्रंथ हमें क्या अध्ययन करना है। आप ऐसे कितने बार कहो तो भगवत गीता को रोज पढ़ते हो, और कितने भक्त हो तो श्रीमद भागवत को रोज पढ़ते हो, और कितने भक्त हो जो भी चैतन्य चरितमृत को कम से कम हम में एक दो बार पढ़ते हो, और कितने भक्त हो जो कि प्रभुपाद की गीता पढ़ते हो। तो आप सबको क्या करना चाहिए, अध्ययन बनाना चाहिए। यहाँ कहा गया है भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। भगवान की अनेक लीलाएं हैं, चैतन्य महाप्रभु की एक बड़ी प्रसिद्ध लीला है, एक भक्त है चैतन्य महाप्रभु जी के जिनका नाम था कोलवेज श्रीदास। कोलवेज श्रीदास भौतिक दृष्टि से गरीब थे, उनका छोटा सा व्यापार था, क्या केले के पत्तों के प्याले बनाते थे और केले बेचते थे, छोटी सी दुकान थी उनकी, रहने के लिए एक कमरा था और उस कमरे में रहने के लिए उनके पास एक ही रोटी थी जिसमें भी कई छेद थे और पूरे घर में एक ही बर्तन था। आपके घर में पूरे घर में एक ही प्याला था जो इतना पुराना था कि कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं इतना पुराना टूटा हुआ कि कोई छोड़ कुछ नहीं छोड़। श्रीदार दिन रात भगवान के नाम का उच्चारण करते और स्वयं भगवान है रोज उनकी दुकान में जाते थे और उनकी दुकान चैतन्य महाप्रभु ने छोटी आयु में ही संस्कृत का मान लिया कर लिया, तो रास्ते में चैतन्य महाप्रभु रोज खुले श्रीदार की दुकान में रुकते थे और उनसे पूछते थे तो आज क्या भाव है केले का, तो कहता था एक पैसा दर्जन नहीं बोलना है। तो बहुत कथा कमा रहे हो,
तो बहुत धनी हो, मुझे पता तुमने धन अपना छुपाया हो।
तो मेरे श्रीराम कहते थे
अगर मैं इतना धनी हूं, अब मेरे घर में आके देखो क्या धन है मेरे पास,
देखो मैंने आपसे छुपाया तो नहीं।
फिर वहां पर कहते थे एक दिन तक पूरे विश्व को बताऊंगा तो कितने धनी हो, आज नहीं। फिर वहां पर गुरु सौदा करते थे कई बार, बोला बेटे सीधा संगम की कहता था आप किसी और दुकान में क्यों नहीं चले जाते, मेरी दुकान में क्यों आते हो रोज, अगर आपको दूसरी दुकान में सस्ता मिला तो वहां ले लो। वहां पर कहते थे नहीं, यू आर अ स्टेडी सप्लायर, मैं दूसरी दुकान में क्यों जाऊं, बड़ा गहरा और खुले में श्रीदार थोड़ी सी आमदनी कितना सम्मान करते हो एक खेले के प्यारे के, उसका 50% वो खर्च थे गंगा की सेवा में। एक समय उन्होंने जब कहा हाँ उनको गंगा की सेवा करते, वहां उन्होंने कहा गंगा तो मेरे चरणों से आ गई। तो मैंने सीता ने कहा विष्णु 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 नाम मन कर मैंने पता नहीं था कितने नाम हो। और इस समय बड़ा गहरा सम्मान था। और एक समय जब चैतन्य महाप्रभु अपने दैवीय रूप प्रकट कर रहे थे, उन्होंने 5 भक्तों पर निमंत्रण दिया था इस रूप का दर्शन प्राप्त करने के लिए। जब उन्होंने अपने भक्त को भेजा खुले मुझे श्रीराम को लाने के लिए, उन्होंने कहा तो बड़े आसानी से तक घर उसके घर पर पहुंच गए, क्योंकि उन घर में रात के सारी रात भी वो क्या करता है हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और जो उनके पड़ोसी थे वो कहते थे इस आदमी को भूख सता रहे, खुद भी नहीं सोता हमें भी सो रहे। महाप्रभु ने जब भक्तों से पूछा क्या होना चाहिए, खुद श्रीराम से पूछा ऐश्वर्य चाहिए ऑपोजिट चाहिए क्या चाहिए, खुद मेरे श्रीराम ने कहा अगर आप कुछ वर देना चाहते हो तो ये वर दीजिए कि हर जगह में मुझे आपकी संगत मिलना चाहते हो मेरे क्या होगा कि वो शुद्ध भक्ति किसी प्रकार के ये होना चाहिए हम सबका भाव। और वहां पर कितने आभारी थे एक भक्त के प्रति, जब महाप्रभु एक आंदोलन ले गए थे चंद्रकार जी के महल में, और महाप्रभु ने लगभग 10 घंटे लगातार कीर्तन किया, उसके बाद उन्हें प्यास लगी पानी पीने की इच्छा थी, तो पानी उन्होंने पिया उन झूठे बर्तन में जो गुरुवृत्ति शिला के बर्तन था, शिला के बर्तन को लेकर इससे पानी पी रहे थे। और फल मुझे सीता जी करके देखा तो उन्होंने कहा अब क्या कर रहे हो मेरे झूठे चूठे बर्तन से पी रहे हो। महाप्रभु ने कहा मैं अपने को शुद्ध बना रहा हूँ। तो इस प्रकार भगवान के भक्तों की अनेक लीलाएं हैं। आज के वातावरण में हम बहुत ही विषय में रुचि लेते हैं, फिल्मी कलाकार की लीला में राजनीतिक नेता की लीला में, पर हमें रुचि लेनी चाहिए इसमें यहाँ के भगवान के भक्तों की लीला में। तो यहाँ संत कुमार कह रहे हैं कि हमें सदा भगवान की लीलाओं का वर्णन करना चाहिए, भगवान की लीलाओं के साथ भगवान के उपदेश का भी स्मरण करना चाहिए। उदाहरण के लिए भगवान का जो उपदेश है भगवद गीता,
उसका हमें मालूम नहीं है। और अगर मन शुद्ध भावों में जुड़े रहेगा तो बचेगा क्या कर्म भाव से। तो कुमारानंद ने कहा भगवान की नाम का स्मरण कर आगे कहते हैं बिना किसी भौतिक कामना के जाम नियमों का पालन करो। तो नियमों का पालन करो किस भावना से शुद्ध भक्ति की प्राप्ति के लिए, शुद्ध भक्ति के मार्ग में सबों का प्राप्त करने के लिए। शास्त्र में भगवान कहते हैं भगवत गीता में भगवान कहते हैं चार परिस्थिति में लोग फिर ईश्वर में आते हैं पानी एक जैसे काम पाओ उन्हें ध्यान चाहिए कष्ट में है रोगी जिज्ञासा और एक है ज्ञान के आधार पर भगवान की सेवा में आता निष्काम भाव से। निष्काम भाव से जुड़ोगे तो हमेशा शांत रहोगे। ऐसे भगवान कहते सकाम भाव से जुड़ना तो जुड़ो और भक्ति में इतनी शक्ति है कि भक्ति के नियमों के पालन से जो बहुत ही भाव है वो शुद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ कुमारदास कह रहे हैं कि हमें भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए और निष्काम भाव से भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए और साधु संगत हरि नाम के उच्चारण शास्त्र के अध्ययन द्वारा इस विषय का हमें ज्ञान मिलता है। आगे कह रहे हैं कि हमें दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। इस विषय में चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा है जो उन्होंने सनातन गोस्वामी को दी थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा भक्ति का सुंदर बगीचा बड़ी सरलता से नष्ट हो सकता है किस कार्य के द्वारा। तो इसलिए हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। अनेक प्रकार के अपराध हैं सेवा अपराध आप ठाकुर जी की सेवा करते हो इसमें कई अपराध हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। गुरु अपराध नाम अपराध इन अपराधों से हमें बचना चाहिए। खास करके वैष्णव की निंदा से हमें बचना चाहिए। और कहीं बहुत ही समाज में हमें एक दूसरे की आलोचना करने में बड़ा आनंद आता है पर भक्ति के मामले में वैष्णव निंदा से बचना चाहिए। और सबसे सरल सबसे उत्तम मार्ग है जब आप दूसरे के गुणों को देखो दूसरे की उत्साह को जानने का प्रयास करो। यहाँ कहा जा रहा है कि हमें वैष्णव निंदा से क्या करना चाहिए। तो आप अगर हम कहें कि वो दूसरा हमारा मित्र है वो हमेशा निंदा ही करते रहते तो जो निंदा करता है आप वहां से बच जाओ। आप कहो कि हमें निंदा नहीं सुननी क्योंकि निंदा सुनने से हमारी भक्ति जो है कमजोर हो जाएगी और इस कारण हमें इसे तो वैष्णव प्राण से बचो और वैष्णव निंदा से बचो। और वैष्णव प्राण और निंदा से बचोगे तो महाप्रभु ने कहा भक्ति का जो बीज है उगते जाएगा प्रांत में भगवत से प्राप्त हो जाएगा। पर अगर हम निंदा इत्यादि में जुड़ेंगे जो भक्ति के कारण है वो मिल जाएगा। सादा जीवन बिताना चाहिए। कैसा जीवन?
सादा जीवन।
इसलिए प्रभुजी में कहते थे आर प्रिंसिपल इज सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। सादा जीवन, सादा जीवन का अर्थ है उतना ग्रहण करो जितना आवश्यक है और उससे अधिक नहीं और ऊंचा ऊंचा विचार, ऊंचा विचार का क्या अर्थ है कि आप प्रजाति बोलने के इच्छुक हो और जिन विषयों का वर्णन कर रहे हैं उस पर आप ध्यान दे रहे हो और इसमें अगर अभाव रहेगा तो आप अध्यात्मी में अध्यात्मिक प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक बनने का क्या जीव लक्ष्य कर रहे हैं, उनका सिद्धांत है ऊंचा जीवन सादा विचार। रहो राजा जैसे तो क्रेडिट कार्ड का जब होना तो क्रेडिट कार्ड एक से दस दस क्रेडिट कार्ड होते हैं। अगर धन नहीं भी है खर्चा भी हो बैंक वाले तो आपको इंकरेज करते हैं किसी रुचि को नहीं है तो बहुत एक नियम क्या है ऊंचा जीवन रहो राजा जैसे और सादा विचार सोचो किस प्रकार पशु के कहा है इंडिया ट्रिप की सुविधा और सुबह से रात तक इंडिया ट्रिप की रुचि हो तो ये है भौतिक जीवन। पर आध्यात्मिक जीवन के कहा जा रहा है क्या सादा जीवन निभाने का प्रयास करते और सादा जीवन का अर्थ है उतना ही मेहनत करने की आवश्यकता है तो उसे अधिक भगवान की सेवा में ऊंचा विचार ये भाव है कि हम धरती में आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने सनातन स्वामी को उपदेश देते हुए कहा शरणागत होने के छह साधन में जिनमें सबसे पहला यह है जो कि भक्ति के लिए अनुकूल है उसे आप विचार करो और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसे क्या करो। हे मेरे मित्र जो भी कीमत भरनी पड़े करो और कृष्ण भक्ति को तो ऊंचा विचार का अर्थ है सदा हमारे मन में ये भाव रहना चाहिए कि हम भक्ति के मार्ग में उन्नति करें और अगर हमें लगे कि इस कार्य द्वारा उन्नति संभव नहीं हो रही तो हमें उस कार्य को क्या करना चाहिए त्याग देना चाहिए। ये नहीं सोचते थे नहीं ये तो अटैचमेंट है कई बार भगवान नहीं करते स्वामी क्या करें ये तो हमारा आकर्षण है अटैचमेंट है। अगर हम जानते हो कोई कार्य अनुकूल नहीं है प्रतिकूल है तो हमें त्याग देना चाहिए। जैसे आपको अगर पता लगे कोई भोजन प्रतिकूल है तो आप क्या करोगे तो आगे वो क्या कहते हैं तुम्हारा आगे कहते हैं कि हमें चाहिए कि वो सदा सहनशील बने उसे चाहिए कि वो हमें सदा करना सीखे तो हमें सहनशील होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने इस विषय में क्या उपदेश दिया है नाम की करो हमारी अत्यंत सहनशील हो दूसरों को आदर दो बिना किसी आदर की तो आप हमें ये पूछ सकते हो कि हमने सुन लिया तुम्हारा सा उपदेश जिन्होंने पृथ्वीनाथ को दिया था और ये उपदेश पूरी प्रजा के था किस प्रकार आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो सकती है। ज्ञान जिन विषयों का वर्णन किया इन विषयों की चर्चा की गई है उनके लिए जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं और आप ये कह सकते हो या पूछ सकते हो कि हमारे ये योग्यता नहीं है ये शक्ति नहीं है तो ये कैसे आएगी शक्ति सहनशील बनने के लिए सारा जीवन बिताने के लिए संत की संगत में रहने की इच्छा सदा भगवान की लीला का स्मरण और भौतिक कामना से बचे इन सब गुणों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो क्या है
उत्तर
कली काले नाम रूप कली कल भगवान अवतारे होते किस माध्यम से अगर हम सब माँ का जाप करेंगे रोज, चैतन्य महाप्रभु ने सबको आदेश दिया है क्या ये हरि नाम का उच्चारण करेंगे। भगवान ने दयालु है, कलयुग में प्रकट होते हैं किस माध्यम है तो ये हरि नाम का उच्चारण हर व्यक्ति कर सकता है। आज सबसे सौभाग्य है भारत भूमि में जन्म लिया है जहाँ बचपन से ही आप हरि नाम की महिमा सुनते आ रहे हो, हरि नाम को सुनते आ रहे हो। और उन देशों में भी जहाँ की कभी किसी ने हरि नाम सुना भी नहीं था, आज हरि नाम के बल पर, हरि नाम के उच्चारण के बल पर आज क्या बन गए हैं, शुद्ध राम बन गए। एक बार किसी ने बहुत प्रभाव से पूछा, आप स्वामी जी को चमत्कार कर सकते हो क्योंकि ये उम्मीद की जाती है स्वामी जी ने कहा नहीं मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता, मैं एक चमत्कार जरूर किया कौन सा चमत्कार, मैंने हजारों बच्चों को राम जुड़े थे पाप के कार्य में आज वो बन गए हैं पूजे कोटि के। तो बाबा जी ने संस्था शुरू की हरि नाम के माध्यम पर और हरि नाम के आज अगर आप दिया में जाओगे वहाँ एक बड़ा प्रसिद्ध पार्क है जिसका नाम है नॉन स्क्वेयर पार्क। बाबा जी जब अमेरिका गए थे भारत एक मृदंग ले गए तो उस मृदंग को लेकर बाबा जी घेर के नीचे खड़े होकर कीर्तन करते थे और इस कीर्तन ने आस्ते आस्ते कई मंदिरों को आकर्षित किया और फिर इस प्रकार ये संस्था सारे विश्व में पहुंची। और आज अगर आप शाम के पेड़ पहाड़ में जाओगे तो उस पेड़ के नीचे एक बड़ा सुंदर ब्लैक This is a tree under which the Hare Krishna movement was founded. Yeah. So, this is where Bhakti Vinod Swami, the founder of the Hare Krishna movement, started his worldwide movement. So, ye sab shuddh aarambh ho gaya kaise ye? To aap sab duniya upasthit ho, jaise maine aarambh mein kaha tha, इस सभा में कई प्रतीक्षित भक्त हैं, कई सोलह जाप करते हैं पर कई हैं जो अतिथि हैं, कई हैं जो रविवार को आते हैं, एक माना दो माना तीन माना चलते हैं। पर आप सब जो आते हो इसलिए आते हो क्योंकि आपकी ध्यान के कार्य में रुचि है और आपकी रुचि है कि ध्यान की उन्नति करो। तो आज मैंने हमने आपको श्लोक पढ़कर सुनाया है, ये भागवत में दिया गया है इसलिए उन भक्तों के लिए जो कि आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं। तो आप इधर कितने भक्त आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं सब सब प्रयास करोगे तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्रवणम कीर्तनम की बहुत आवश्यकता है। श्रवणम कीर्तनम के बिना ये कार्य संभव है और अगर आप श्रवण कीर्तन करोगे तो कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु जी की असीम कृपा से अंधा व्यक्ति देख सकता है, गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, बहरा व्यक्ति सुन सकता है और नंगा व्यक्ति पहाड़ों के पार जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कठिन कार्य सरल बन जाता है। तो आप सब कठिन कार्य को सरल बनाना चाहते हो, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए विचार करना चाहिए। तो उर्जु की कृपा से कठिन कार्य सरल हो जाता है, उनकी कृपा के बिना सरल कार्य कठिन हो जाता है। आप सभी हरि नाम का जाप कीजिए नियमित रूप से। आगे से कितने भक्त हो योगी 16 माला का जाप रोज नहीं करते, और जो बिल्कुल माला का जाप नहीं करते सब करते, तो जो माला का जाप करते हैं उनका क्या प्रयास करना चाहिए
कि ध्यान से।
तो यही आप सबसे निवेदन, आध्यात्मिक जीवन बहुत ही सरल बना दिया है। महाप्रभु का आदेश क्या है, क्या नाम क्या है, हरि नाम का बोलो, दूसरा भगवतम और गीता का जब पूछा था पहले कितने भर गीता रोज पढ़ते हैं, कई ने हाथ उठाया था, तो जब हमने पूछा कि कितने भाग भागवत आप रोज पढ़ते हैं तो बहुत कम लोगों ने, आप में से कितने भक्तों के पास श्रीमद् भागवत का सेट है घर में, तो ये अच्छी बात है अपना भागवत का सेट सबके पास होना चाहिए घर में, और भगवत गीता सबके पास है। कितने भारतीय जिनके पास चैतन्य चरित्र गीता का सेट है, पंडित जी कह रहे कि वो आपका उसका अवसर है, तो कम से कम भागवत हम से शुरू करो। यही चैतन्य चरित्र गीता का सार आपको प्राप्त है टीचिंग द लॉर्ड चैतन्य में, तो अगर चेतन चंद्रमिका नहीं प्राप्त हो रही इस समय तो आप टीजी में और चैतन्य पढ़ सकते हो। आप तो धरती हो गई क्योंकि प्रभुपाद ने कहा इवन वो चली द फाउंडर ऑफ द स्पिरिचुअल कल्ट मूवमेंट, तो झारखंड भक्ति के महान आचार्य थे जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जीवन के ऊपर ग्रंथ लिखा था, उसे सारे विश्व के महाविद्यालय में भेजा था, और धार्मिक को पूरा विश्वास था कि जो चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी है जरूर सफल होगी। उनकी भविष्यवाणी थी एक सेनापति आएगा जो कि इस शिक्षा को सारी दुनिया में पहुंचाएगा, तो वो सेनापति कौन था, पिछले प्रभुपाद जी की हार्दिक इच्छा थी कि भारतवासी कृष्ण भक्ति को गंभीरता से स्वीकार करें, तो आप सब इस शिक्षा को ग्रहण कीजिएगा, गंभीरता से स्वीकार कीजिएगा, और आगे इस शिक्षा का उद्देश्य भी दूसरों को पहुंचाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा बोलो कृष्ण बाजो कृष्ण बोलो कृष्ण, कृष्णा का नाम लो, कृष्णा के शिक्षा को अपनाओ, और घर घर जाकर लोगों को कहो कृष्णा की शिक्षा का नाम। इस प्रकार हम अपने जीवन को सफल बनाए। हरे कृष्ण।